मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 2 दिसंबर 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के फरवरी मार्च में होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं ओंकार हजारे जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, जिशान अली आप रांची झारखंड से हैं और सपना चौरसिया आप उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। तो ओंकार, जिशान और सपना आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज शुक्रवार है तो कुछ सूचनाएं हैं। सूचना ये फ्रेंड्स कि सैटरडे संडे को हॉलीडे होने के कारण डेली ऑडियो लेक्चर एंड लाइफ मैनेजमेंट दोनों ही नहीं आएंगे। हां, कल यानी कि सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज .com पर मिलेंगी और उसके साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी। और दोस्तों, उस एक्स्ट्रा में है योजना और कुरुक्षेत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों के एक एक यानी कि टोटल 4 आर्टिकल और साथ ही एक वीकली क्वेश्चन जो मैं हर सैटरडे को आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। और उस क्वेश्चन को मैं ये मानकर आपको देता हूं कि आप सप्ताह भर इस पर मेहनत करके और अच्छे से इसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और मित्रों, इसके साथ ही हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उनके मेल पर भेजा जाएगा। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब मैं अपने उन सभी नौजवान साथियों के प्रति, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जो अब बहुत जल्दी कल से ही शुरू होने वाली जो सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा है उसमें एपियर हो रहे हैं। मित्रों, एपियर होने वाले में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो क्लास के स्टूडेंट नहीं रहे हैं लेकिन डेली ऑडियो सुनते रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे स्टूडेंट की है जो ऑडियो नहीं सुनते रहे हैं, जिन्हें ऑडियो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम लेकिन जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है। मेरे लिए सब बिल्कुल बराबर है हमारी अकेडमी की दृष्टि से और उन सब के प्रति बिल्कुल समान, विशुद्ध, पवित्र और गहरी भावनाओं के साथ हम सब अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर, उन सब ने इतनी मेहनत करके प्री क्वालिफाई किया है, मेंस में भी उन्हें शक्ति प्रदान करो ताकि वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहां देकर आ सके और बट नेचुरल है कि उसमें जो सर्वोत्तम होंगे उनका चयन हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपना बेस्ट दे देते हैं तो सच मानिए, पहली बात तो यह है कि हमें किसी तरह का अफसोस नहीं रह जाता और दूसरी बात, नेक्स्ट के लिए हम और ज्यादा कर पाते हैं क्योंकि हमको पता लग जाता है कि हमारा बेस्ट यही था, हमने कोई चूक नहीं की है। और जब हमने चूक नहीं की है तो अनुमान अपने सामर्थ्य का लग जाता है और उसे हम बढ़ाकर फिर नेक्स्ट में तो सफल हो ही जाते हैं। मैं सभी प्रिय स्टूडेंट से ये जरूर कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप सब मेंस में एपियर हो रहे हैं, फिजिकली अपने आप को बिल्कुल फिट रखें और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने को मेंटली बैलेंस रखें। प्लीज, एग्जाम में कितना भी कठिन पेपर क्यों ना आ जाए, बिल्कुल हिम्मत मत खोइए, बैलेंस मत खोइए, धैर्य मत खोइए। इसका कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं है मित्रों कि पेपर सरल है या कठिन है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के नेचर को प्लीज समझिए और यदि सरल है तो फिर सबके लिए सरल है, स्कोर हाई हो जाएंगे, और यदि कठिन है तो सबके लिए कठिन है, स्कोर लो हो जाएंगे। लेकिन आपको बस इस लो या हाई में, हायर साइड में पहुंचना है, बस लो का हायर आपको हासिल करना है और जिस तरह से हाई का आपको हायर हासिल करना है। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हों, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और ये मानकर चलिए कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए अंतिम क्षणों तक इस आत्मविश्वास को बनाए रखना भी एक चरित्र का महत्वपूर्ण अंग है, और यह समझ लीजिए कि उसकी भी परीक्षा इसी माध्यम से हो रही है। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे बार बार, एक बार ही नहीं बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा, कितनी भी गहरी अंधियारी रात क्यों न हो, कितना भी कठिन पेपर क्यों न हो, प्लीज इस बात का भरोसा रखिए कि रात रुकती नहीं है। ये रात ढलेगी, सूरज निकलेगा, उजाला फैलेगा। आपको केवल अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है, रुकना नहीं है। जितना भी लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो, लिखने से मत चूकिए, हिम्मत रखिए और बुरी से बुरी स्थिति में भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जो ऐसा करेगा ईश्वर उसके साथ होगा। तो मित्रों, इन हम सभी की शुभकामनाओं के साथ अब मैं आता हूं अपने न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों, कल के रेडियो की न्यूज आप लोगों ने सुनी है, और सच पूछिए तो न्यूज में, कल के न्यूज में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं सिविल सर्विस के लिहाज से इंपॉर्टेंट बता सकूं। कुछ घटनाएं तो पीछे की ही चलती आ रही हैं, इसलिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। दोस्तों, एक सोने गोल्ड को लेकर के जरूर कुछ खबरें थी। पिछले साल के अनसॉल्व पेपर में आप देखेंगे कि सोने को लेकर के क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना। स्वर्ण वो लेकर के सरकार जो आई थी कि आप सोना सरकार के पास रख दीजिए और बदले में आपको सरकार ब्याज भी देगी, उस पर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और अभी आप देख रहे हैं कि जी, जो विमुद्रीकरण की जो बात हो रही है उसमें फिर बात गोल्ड पर भी चली गई है। आयकर में संशोधन किया गया है कानून में, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। और जब ये खबर आई कि लोग बहुत ज्यादा अपने काले धन से सोना खरीद रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि सरकार को उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि काला धन जो ब्लैक मनी है ये एलो मेटल में कन्वर्ट हो गया, तो बाद में यही एलो मेटल फिर से ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर अंतर तो कुछ नहीं पड़ेगा उस पर। तो सोने पर भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सरकार एक फिर से के व्यवस्था लेकर के आई है, जो आप लोगों ने सुना है, तो उसकी डिटेल में जाना मैं जरूरी नहीं समझता। लेकिन फिर भी ये सारे तथ्य आपको मालूम इसलिए होने चाहिए कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो एटलीस्ट आपको लगना चाहिए कि हाँ, आप इस परिदृश्य को पूरी तरह से जानते हैं और बहुत अच्छे से विश्लेषण पूर्वक आप इसका जवाब दे सकेंगे। तो मित्रों, AIR न्यूज में सच पूछे तो इससे अधिक और कुछ भी नहीं। हाँ, हार्ट ऑफ एशिया की जो बैठक हो रही है उस पर हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। जब खबरें आएंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम सीधे चलते हैं, बल्कि बेहतर होगा कि AIR न्यूज के बाद सीधे सीधे न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। एक दो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स फ्रेंड्स बहुत अच्छी क्लिपिंग्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों से खासकर आज एक अलग अंदाज में बात करने जा रहा हूं। मित्रों, वो अंदाज इससे रिलेटेड है कि कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है राष्ट्रगान को लेकर, मैंने आपसे कहा था कि अखबारों में इसके ऊपर डिटेल्स आनी शुरू होंगी और समीक्षाएं भी लोग लिखेंगे और अपने अपने तरीके से इस तथ्य की एनालिसिस भी करेंगे। और आप देखेंगे कि आज कुछ इस तरह के कमेंट्स, एडिटोरियल कमेंट्स भी हैं, मटेरियल भी है, लेख भी धीरे धीरे आएंगे। मित्रों, अब सवाल यह है कि सिविल सर्विस में क्या होगा, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या हो सकता है, ये अनुमान लगाना स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर नहीं पूछा जाएगा, राष्ट्रगान के बारे में उसने क्या कहा है ये नहीं पूछा जाएगा, किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए इस पर थोड़ा सा वो पूछ सकते हैं। और सच पूछिए तो मैं पिछले वीक में जो आपको वीकली क्वेश्चन दिया गया था, जिस वीकली क्वेश्चन के शब्द थे दोस्तों कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किन अर्थों में राष्ट्रवाद से भिन्न है, भारतीय संदर्भ में धर्म निरपेक्षता के साथ इसके संबंधों का स्पष्ट इसके संबंधों को स्पष्ट कीजिए, इस तरह का एक प्रश्न था। अब आप देखेंगे कि इस प्रश्न का बहुत कुछ संबंध इस राष्ट्रगान से भी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो आप देखें कि खुद एक कंटेंट के रूप में आपको इस प्रश्न के लिए तथ्य मिल गया, ये जो इस प्रश्न को अगर आप हल करेंगे तो इसमें तथ्य मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो है राष्ट्रगान है ना, ये कोई एक किसी देवी की स्तुति नहीं है, ये किसी धर्म का मंत्र नहीं है, ये कोई श्लोक नहीं है, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये किसी संस्कृति से भी संबंधित नहीं है, किसी संस्कृति से, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, ये धर्म से भी संबंधित नहीं है, जिसे आप धार्मिक राष्ट्रवाद कह लेंगे, ये सीधे सीधे राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, ये राष्ट्र का गान है। अब आप राष्ट्र को चाहे भारत माता के रूप में देख लें, जिस रूप में भी आप देखना चाहें अपनी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के तहत आप उसको देख सकते हैं, लेकिन है यह राष्ट्रवाद, यही सच्चा राष्ट्रवाद है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, जिसे आप संविधान कह सकते हैं, यह हमारे राष्ट्रवाद है, इसके प्रति प्रेम होना ही चाहिए। लेकिन जब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को देखते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है कि किसी संस्कृति विशेष को राष्ट्र बनाकर और उसी को सब कुछ मान लेना। भारत में जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है इस बात की है कि यहां जितने भी धर्म भाषा संस्कृति के लोग हैं वो सब एक हैं, और ये यानी कि हमारी संविधान में इस बात को शामिल किया गया है इसलिए एक है, बल्कि हमारे देश का निर्माण ही ऐसा हुआ है इसलिए एक है। आप क्या कर लेंगे, आप प्राचीन साहित्य उठा करके देखिए तो प्राचीन साहित्य में अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही चले जाएं तो पता लगा यूनान से हमारे संबंध थे और यूनान की जो राजकुमारी है चंद्रगुप्त से ब्याही थी, आप देख रहे हैं, तो वहां से यूनान की संस्कृति, फिर आप उसमें चले जाते हैं कनिष्क वगैरह के समय में तो शक हूण कुषाण उन सब की संस्कृति हमारे यहां आ रही है, फिर अरब राष्ट्र अफगान और फिर मध्य एशिया में टर्की, ये सब के सब भारत में आ रहे हैं, यहूदी आ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी आ रही है। और मजेदार बात यह है कि भारत इन सब का खुले मन से स्वागत कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि इनको पचा रहा है, यानी कि स्वागत करके इनको एक टापू की तरह अलग से रख दिया है, उनको पचा रहा है और पचाने के बाद अपने स्वरूप में भी परिवर्तन कर रहा है। जो भारतीय संस्कृति है, या कह लीजिए इसको अगर आप हिंदू संस्कृति ही कहें, तो वैसी ही नहीं है जैसे कि ये 2000 साल पहले थी, यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और इसीलिए ये सनातन है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे समय के अनुकूल ये अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, और जो जो भी तथ्य जो भी धरती इस धरती पर है यदि समय के अनुसार अपने को परिवर्तित करता रहेगा तो वो सनातन ही रहेगा, वो समय से परे हो जाएगा, ये इस संस्कृति की विशेषता है। तो इसीलिए हमारे संविधान में ऑटोमेटिक तरीके से पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को शामिल किया गया, यह कोई एहसान की बात नहीं थी, जबकि पाकिस्तान ने अपने को धार्मिक राष्ट्र घोषित किया क्योंकि पूरी तरह से इस्लाम धर्म पर आधारित था। तो मित्रों, मैंने तीन चीजें आपको क्लियर की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब आप एक संस्कृति को, अब भारत में अगर आप किसी एक संस्कृति को आधार बना ले, चाहे आप हिंदू सो कॉल्ड कह लीजिए कि हिंदू संस्कृति अपने आप में बहुत चूंकि व्यापक है, और अगर आप हिंदू संस्कृति को भी आधार बनाएंगे तो सच पूछे तो संविधान की सामासिक संस्कृति ही होगी। आप मूल कर्तव्यों में उठा करके देखिए तो मूल कर्तव्यों में दो फ्रेंड्स एक स्पष्ट रूप से शब्द उपयोग किया गया है छठा, जो मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 51 है। यहां मैं मूल कर्तव्य की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि अगर इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे तो बेहतर होगा कि आप मूल कर्तव्य को भी कोट करें। उसका जो अनुच्छेद 51 का जो सिक्स पॉइंट है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, नॉट कल्चर ऑफ वन सिंगल कम्युनिटी या सिंगल रिलीजन या सिंगल एरिया, किसी एक क्षेत्र, एक जाति, एक समूह की संस्कृति नहीं, कंपोजिट कल्चर, सामासिक संस्कृति, ये हमारा राष्ट्रवाद है और यही हमारी धर्मनिरपेक्षता है। वहां एक संस्कृति को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। तो मित्रों, ये जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में ही आप देखेंगे कि उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, वेरी फर्स्ट पॉइंट, पहला ही पॉइंट क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें। आप देख रहे हैं। तो मित्रों, ये जो राष्ट्रगान है, अब मैं इस पर आता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, ये जो डिसीजन है, अब हमें सिविल सर्विस के लिए इस बात का आह्वान कर रहा है कि आप मूल कर्तव्यों को पढ़िए, प्री के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी, मूल कर्तव्यों की आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, मूल कर्तव्यों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे मित्रों की जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, शायद हमारे संविधान निर्माता मानकर चल रहे थे कि हमारे नागरिक कर्तव्य वाले होंगे। 1975 में इमरजेंसी के समय में सरकार को जो भी महसूस हुआ होगा तो बाद में संविधान में संशोधन करके 42वें संशोधन के द्वारा फिर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अब सोच करके देखिए, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि मिसेस गांधी के बाद जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनकर के आए, भारतीय जनता पार्टी की जनता पार्टी की जब सरकार आई तो वो 43वें और 44वें संशोधन लेकर के आए, आपको मालूम होगा। तो जब 43वें 44वें संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन की बहुत सी चीजों को उलट दिया गया, मतलब जो पहले थी उसी तरह से कर दिया गया, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन थोड़ा सा ज्यादातर वो एक डेमोक्रेटिक करेक्टर को थोड़ा सा विगलित कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था, तो उन्होंने चेंज किया। लेकिन मजेदार बात यह है कि मूल कर्तव्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि मूल कर्तव्यों के महत्व को जनता पार्टी ने भी समझा, और केवल समझा ही नहीं, बाद में 2002 में 86वां जो संविधान संशोधन आया है उसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, और वो 11वां। इस तरह से कुल मूल कर्तव्यों की सूची अब 11 हो गई है, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, नया प्रोविजन किया गया मूल कर्तव्य में, राइट। उस समय विपक्ष ने उसका विरोध किया था, और जब वही सत्ता में आए तो इसको चेंज नहीं किया, जबकि बाकी चीजों को चेंज कर दिया, और फिर 2002 में और जोड़ा गया। केवल इससे बात नहीं बनी, तो इससे शो हो रहा है कि कैसे मूल कर्तव्यों की महत्ता बढ़ती चली जा रही है। और दोस्तों, केवल महत्ता ही नहीं बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट भी मूल कर्तव्यों को कोट करते हैं। ठीक है कि इनको आप सीधे सीधे चुनौती नहीं दे सकते, मतलब मैं अपने अगर अपने कर्तव्यों का नहीं निभा रहा हूं तो संविधान में नहीं जा सकते, ये मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक, उसके लिए जो दूसरी सजाएं हैं, आप राष्ट्रगान का आदर नहीं करेंगे तो दूसरी सजाएं हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। लेकिन अब जो न्यायालय जब किसी भी कानून की संवैधानिकता पर विचार करते हैं कि ये कितना सही है, संविधान के कितना अनुकूल है, तो आपने महसूस किया होगा कि अब नीति निर्देशक तत्वों पर भी उनका ध्यान जाता है और मूल कर्तव्यों पर भी उनका ध्यान जाता है। और 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सीधे सीधे कानून की संवैधानिकता की व्याख्या करते हुए साफ तौर पर कह दिया दोस्तों कि अगर कोई विधि का प्रश्न उठता है, कानून का प्रश्न उठता है, तो मूल कर्तव्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती, हमें मूल कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मूल कर्तव्यों का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जो राष्ट्रगान है मैंने बताया कि वो मूल कर्तव्य का हमारा पहला बिंदु है। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब कुल ये कि मैंने दोनों को क्लब कर दिया है। बहुत से स्टूडेंट की बार बार रिक्वेस्ट आती है कि सर, आप जो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उन्हें कैसे लिखा जाना चाहिए, तो प्लीज उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। तो आज मैंने, चूंकि रेडियो न्यूज में कुछ खास नहीं था, तो मैंने पिछले वीक के इस क्वेश्चन को भी ले लिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और पंथ निरपेक्षा। देखा आपने कि कैसे तीनों बड़े खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से लिंक हो गए, और मैंने संविधान की भी चर्चा कर दी। व्यूज आप अपनी तरफ से रख एनालिसिस कर लीजिए, ये पावर तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और इसके बाद मित्रों, कि जो अभी राष्ट्रगान का जो सवाल आया है वह मूल कर्तव्य वाले टॉपिक को सिविल सर्विस के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना देता है। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की और क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सब आप अपने अपने अनुसार देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर, तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्हें बहुत, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इसमें से एक मेल है मेरे पास अनीस रंजन सरकार का, जो मलकानगिरी उड़ीसा से है। उन्होंने लिखा है कि अभी उन्होंने वो अपीयर हुए थे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उड़ीसा का पीएससी का हुआ है, और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस वही पूछे गए हैं जो डेली आरडीओ में चर्चा की गई हैं। सर, आई हैव बिन लिसनिंग डीएजी, मैं बहुत लंबे समय से आपके इस डीएजी को, डेली आरडीओ गाइडेंस को सुन रहा हूं, और इस पर डेली मैं नोट्स भी बनाता हूं, और ढेर सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे इसी डेली आरडीओ गाइडेंस से ही थे, और मेरा सेंस इतना डेवलप हो गया था, कॉमन सेंस, कि मैं क्वेश्चंस को हल करने में मुझे बहुत आसानी हुई। और सर, यदि मैं जब कभी आप किससे मुलाकात होगी तो मैं आपको ऑटोग्राफ अपनी डायरी में लेना चाहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीश आपके इस प्रतिक्रिया के लिए, हम सब आपकी सफलता की कामना करते हैं। एक मेल आया है मित्रों प्रीति बंसोड़ का, बहुत ही प्यारा मेल है। गॉड ब्लेस यू प्रीति, ईश्वर तुम्हें बहुत शक्ति दे, तुम्हारी भावनाओं को इसी तरह से ऊंचा बनाए रखे और जीवन में सफलता भी प्रदान करे। तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं तुम्हारे प्रति सच पूछो तो अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दोनों प्रेषित करता हूं। मित्रों, बाकी अन्य दोस्त हैं जिन्होंने मेल लिखे, उनमें से कुछ के नाम हैं: कर्शन गढ़वी गुजरात से, अमित पांडे रीवा से, लीलावती कुमारी, अंकित शुक्ला दिल्ली से, शिवेंद्र जायसवाल जांजगीर छत्तीसगढ़ से, रंजीता देवनाथ भिलाई छत्तीसगढ़ से, चंदन सिंह, निशांत चौबे, राहुल कुमार औरंगाबाद बिहार से, संदीप राय ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और प्रीति गुप्ता। आप सबका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। दो दिनों के बाद सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इन दो दिनों के लिए मेरी और मेरे टीम की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये दो दिन बहुत ही आपके लिए सुखद हों, ऊर्जावान हों और उपयोगी हों। तो मित्रों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।